ताड़म
नमो अरिहन्नाड़म
नमो सिद्धाड़म
नमो सिद्धाड़म
नमो आयिर्याड़म
नमो आयिर्याड़म
नमो गज्जायाड़म
नमो गज्जायाड़म
नमो लोय सव्यसाहूणम ईसु पंच नमो यारो सव्य पाव प्रणाशनो मंगलाण च सव्येषम् प्रथमं भवै मंगलम् नमो नाणस् नमो दंशनस् नमो चरितस् नमो तवस् चत्तारि मंगलम् अरहंत मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहु मंगलम् केवलि पंडतोधम्मो मंगलम् चत्तारि लुगत्तमा अरहंत लोगोत्तमा सिद्ध लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवलि पंडतो धम्मो लोगोत्तमा चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरहंत शरणं प्रव्रजामि सिद्ध शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलि पंडतो धम्मो शरणं प्रव्रजामि परम पूज्य श्री देवाधिदेव तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान समय पाहुक ग्रंथ राज की आचार्य गुरु विद्यासागर मुनिराज की
एक मिनट पंचहाचार फिर क्या कहा आपने पंचज्ञ
पंचाग्नि नहीं बोलना, पंचहाचार पंचग्नि संसाहया। भंते पंच महा गुरु भक्ति का सगो गौ तत्सालोचेयु अठ महापाड़िहेर संयुक्तानम अरहंतानम अठ गुण संपन्नानम उद्धलोय मथयम्य पैठ्यानम सिद्धानम अठ पवयन माउ संयुक्तान आयरियान आयाराज सुदनानो विदेशयान उवच्छायान तिरयन गुण पालन रयान सब साहून मिच्छकालम अच्छेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुख कौ कमक कौ बोहिला हो सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम पंच परमेश्वर भगवंतों की। वंदितु सर्व सिद्धि धूमचल मनोवम गईं पत्ते वोच्छामि समय पाहुद मिणमोसय केवली भणियम। पुण्य पापाधिकार में पुण्य और पाप दोनों ही कर्म बंधन हैं, इसलिए पाप को बुरे स्वभाव वाला और पुण्य कर्म को अच्छे स्वभाव वाला समझना भूल है। और इसके लिए दृष्टांत दिया था पांडव मुनिराजों का कि पांडव मुनिराज पांच थे, लेकिन पांच में से तीन मोक्ष गए और दो नकुल सहदेव मुनिराज सर्वार्थ सिद्धि में देवलोक में अहमिंद्र पद को प्राप्त हुए। कारण क्या? कारण केवल ये था कि इन्होंने सर्वार्थ सिद्धि के योग्य पुण्य कमा लिया था और उन्होंने उस पुण्य का बंध नहीं बांधा था, तो पुण्य न बांधने वाले मोक्ष चले गए और पुण्य बांधने वाले संसार में रह गए। विचार करने पर सर्वार्थ सिद्धि विमान देवताओं का अंतिम विमान है और उसके पश्चात जो भी भाव धारण करते हैं मनुष्य पर्याय में आते हैं वो अवश्य मोक्षगामी होते हैं, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि मोक्ष नहीं है। सुकुमार स्वामी सर्वार्थ सिद्धि गए, मोक्ष नहीं जाता है। नकुल सहदेव मुनिराज सर्वार्थ सिद्धि गए, मोक्ष नहीं जाता है। तो मोक्ष न जा पाने की वेदना वो ही समझ सकते हैं जिनको उस विशाल पुण्य के भंडार स्वरूप सर्वार्थ सिद्धि की प्राप्ति हुई। देखो, जब अपन जो चीज चाहते हैं वो न मिले और कोई और अच्छी चीज मिल जाए तो मन दुखी तो रहता है। उनका लक्ष्य था मोक्ष और मिली सर्वार्थ सिद्धि, तो कैसे संतुष्टि हो सकती है? ज्ञानी जीव पुण्य के फल को वहां सर्वार्थ सिद्धि में भी कारावास समझते हैं, क्योंकि तीन भाई तो मोक्ष चले गए जो 33 सागर तक विलंब को प्राप्त हो गए। अब जब मनुष्य पर्याय मिलेगी तो मोक्ष जाएंगे, लेकिन रेस्ट हाउस में कितने दिन रहना पड़ेगा? तो वो विश्राम ग्रह हो गया एक प्रकार से सर्वार्थ सिद्धि, पर उनको अंदर में इस बात का खेद है कि अरे इस पुण्य के कारण हम संसार में कैद हो गए। ठीक है, सोने की बेड़ियां हैं लेकिन है तो कैदी, ये बात है। अब जो पापों में रचा पचा है वो अगर कहे कि हमें नहीं चाहिए सोने की बेड़ियां, तो वो तो मूर्खतापूर्ण बात हो जाएगी, क्योंकि अभी तो लोहे की बेड़ियों के कष्ट तो भयंकर है। जेल की चक्की पीसना कठिन परिश्रम का कार्य है और उसकी अपेक्षा से तो पुण्य व्यवहार में से बेहतर है। इसीलिए तो इष्टोपदेश ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है चौथे काव्य में, वरम व्रतैः तदं दैवं ना व्रतैर्वत नारकं छाया तपस्थयो वेद प्रतिपालयतोर्महान। तीन मित्र शिखर जी की यात्रा के लिए निकले ग्रीष्म काल में। अब कई लोग ऐसे हैं जो जेठ महीने में शांतिनाथ भगवान को कल्याण गाते हैं, चतुर्दशी को, कृष्ण चतुर्दशी को कितने कल्याण गाते हैं? तीन। तो उस दिन भी कुछ लोग नियम लेकर के वंदना करते हैं कि नहीं आज भगवान मोक्ष गए तो फिर आज हम वहां शिखर जी में उनकी वंदना करने जाएंगे। और एक सज्जन ने तो भगवान के कल्याणकों के दिनों में उनके निर्वाण क्षेत्रों की वंदना विशेष रूप से की हुई है। तो क्या हुआ कि वो तीन मित्र जब ऊपर जा रहे थे तो एक की गति सबसे अधिक थी, तो वो बहुत आगे चला गया। दूसरे की गति मध्यम थी, बीच में रह गया, और तीसरा बहुत पिछड़ गया, धीमी गति थी उसकी, पिछड़ गया। तो वो जो दो सामने वाले थे जो आगे बढ़ चुके थे वो एक दूसरे के साथ हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो अपन तीनों साथ में वंदना करने निकले थे, और फिर ऐसे थोड़ी चलेगा कि सब अलग अलग करने लग जाएं। तो बोले कि चलो फिर रुक लेते हैं। ठीक है, रुकने को दोनों तैयार हो गए। एक बोलता है कि मैं यहीं रुकूंगा, दूसरा कहता है मैं तो नहीं रुकूंगा यहाँ, मैं तो छाँव में जा करके रुकूंगा। दोनों इंतजार एक का कर रहे हैं, लेकिन एक धूप में दूसरा छाँव में, तो दोनों इंतजार करने वालों में बड़ा अंतर होता है। इसी प्रकार दो जीवों को मोक्ष प्राप्त करना है, और दोनों को अभी प्राप्त नहीं होने वाला, तो कहां इंतजार करना अच्छा है, स्वर्ग में या नरक में? तो वरम व्रते ही पदम देवम, तो व्रतों को धारण कर लो। तो व्रतों को धारण करने से स्वर्ग में एक अच्छा आपको रेस्ट हाउस मिलेगा, वहां कुछ सागरों तक विश्राम कर लेना, या फिर जितनी आयु मिल जाए उतने दिनों तक रुक लेना, और फिर यहाँ आकर के मोक्ष को प्राप्त कर लेना। और फिर दूसरा तरीका ये है, मोक्ष को जाना ही है तो दूसरा तरीका ये है कि असंयम में पड़े रहो, और असंयम में दुर्गति का बंध बांध कर नरक चले जाओ, और नरक से निकल कर यहाँ फिर मनुष्य पर्याय में पुरुषार्थ करके मोक्ष प्राप्त कर लो। तो बेहतर कौन है? उस अपेक्षा से बेहतर। बाकी देखा जाए तो बंधन है, चाहे उसमें एसी लगा हुआ हो या फिर गर्म लू चल रही हो, लेकिन जितना अंतर है उतना अंतर है, और जितनी समानता है उतनी समानता भी है। तो आचार्य कहते हैं कि एक सोने की बेड़ी है और एक लोहे की बेड़ी है, इसलिए तुम राग का राग छोड़ दो। माने राग करने की जो परिणति है उसमें जो तुम्हें रस आ रहा है उसको समाप्त कर दो। तुम वीतराग के प्रति राग कर लो, जब तक राग है राग का राग छोड़ दो। पंचाष्टिकाय प्रावृत ग्रंथ में शुभ भाव और अशुभ भाव का विभाग करके बतलाया, एकदम शॉर्ट में। जो अपन ने पहले पढ़ा था रहन सहन में कि कौन से शुभ भाव होते हैं कौन से अशुभ भाव होते हैं, वो थोड़े विस्तृत थे। भाव पावड़ ग्रंथ में आया था अशुभम से अट्टरुद्धम, आर्थ रौद्र ध्यान अशुभ भाव है, धर्म ध्यान शुभ भाव है, शुक्ल ध्यान शुद्ध भाव है, वो एक अलग हिसाब किताब था। लेकिन पंचाष्टिकाय ग्रंथ में ऐसा बताया कि जीव के अंदर तीन प्रकार के भाव हैं, मोह राग और द्वेष। अब ये तीनों विकारी भाव हैं, तो इन तीन विकारों में दो भाग किए जा सकते हैं, शुभ और अशुभ। तो ये मोह जो है, मोह का अर्थ क्या है? मिथ्यात्व, भ्रम। ये कभी शुभ नहीं होता, भ्रम जो है ना, गलत फहमी, वो कभी भी शुभ नहीं हो सकती, वो अशुभ ही होती है। तो ख्याल में रखिएगा कि मोह अशुभ भाव है। फिर राग द्वेष की बात आती है, तो इसमें भी द्वेष अशुभ भाव है। वो कैसा भी द्वेष क्यों ना हो, अशुभ भाव है। और राग में दो भाग हो जाते हैं, एक अशुभ राग, विषय कषाय संबंधी जो राग होता है ना, वो स्पष्ट सब लोग इससे परिचित है, कोई नई बात नहीं है। टेलीविजन देखते देखते घंटे बीत गए, कोई दूसरे काम में ध्यान ही नहीं जा रहा, उसी में बैठे हुए हैं। अशुभ राग है, राग पर अशुभ राग है, और दूसरे भी इंद्रिय विषयों का जो राग होता है वो भी अशुभ राग है, और अपने जो इष्टजनों के प्रति राग होता है वो भी अशुभ राग होता है। फिर आप कहेंगे कि शुभ राग क्या है, जब सब कुछ अशुभ राग में चला गया था। तो शुभ राग जो है किसी दुखी जीव के दुख को दूर करने की भावना, सेवा, परोपकार, ये सब राग है, सेवा है, परोपकार है। फिर भगवान की पूजा करना, गुरु को आहार दान आदि देना, ये सब शुभ राग में जाते हैं। तो ये पुण्य है शुभ राग। अब शुभ राग में सिर्फ धर्म से संबंधित राग ही शुभ राग नहीं है, किंतु जैसे जीव रक्षा संबंधी, कोई गाय है उसको पीड़ा हो रही है और आप उसकी पीड़ा दूर करने का प्रयास करते हैं, तो वो भी शुभ राग है। तो उसका संबंध यहाँ इससे नहीं है, तो कोई शास्त्रों से उसका संबंध नहीं है, कोई पूजा से भी उसका संबंध नहीं है, तो गुरुओं की सेवा या आहार दान से भी उसका संबंध नहीं है। एक सहज किसी भी जीव के प्रति करुणा भाव आ जाता है, वो भी शुभ है। तो राग दो प्रकार के हो गए, शुभ और अशुभ। मोह और द्वेष ये एक ही प्रकार के हैं, क्या? अशुभ। तो इस प्रकार इतने में पुण्य और पाप का सारा विभाजन हो जाता है। आपको जब भी ये देखना हो कि मेरे इस समय पुण्य का बंध हो रहा है या पाप का, तो आप तुरंत देखिए कि मेरे अंदर द्वेष भाव है, मेरे अंदर भ्रम है, मेरे अंदर अशुभ राग है, तो पाप का बंध हो रहा है तो फिर पाप का बंध हो रहा है। नहीं है तो क्या है ये पता करो। ये तो कई बार मन घुमा देता है, धोखा देता है, बोलेगा कि नहीं 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 है, बिल्कुल नहीं, उसको तो छोड़ना ही नहीं है, उसको तो छोड़ना ही नहीं है। देखिए किसी के बारे में सोच रहा है, अनिष्ट विचार कर रहा है, उसको तो छोड़ना ही नहीं है। फिर आप पूछ रहे हैं कि ये अशुभ भाव तो नहीं है, तो मन कहता है नहीं 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 है, झूठ बोलता है, आपको धोखा देता है। लेकिन धोखे में आना नहीं है अपने को, क्योंकि अपने पास बहुत बड़े सहारे हैं देवशास्त्र गुरु के, तो अपन पकड़ सकते हैं कि देखो कहाँ पर क्या चालबाजी हो रही है। तो द्वेष मोह और अशुभ राग पाप के कारण है और शुभ राग पुण्य का कारण है। अब इसके साथ एक बात और समझने की है कि जब तक राग रहेगा, द्वेष रहेगा, मोह रहेगा, तब तक बंध तो हो गई, पक्की बात है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव के साथ एक विशेष परिस्थिति है कि सम्यक दृष्टि जीव जब शुभ राग रूप परिणत होता है, तो उस शुभ राग के साथ कुछ दूसरी घटनाएं भी होती हैं, उसके आत्मा में कुछ दूसरे तत्व भी, आश्रव गंध संवर निर्जरा मोक्ष आदि सब तत्व है ना, सात तत्व जीव अजीव आश्रव गंध आदि, तो उसमें कुछ अन्य तत्वों का भी समावेश होता है। जैसे सम्यक दृष्टि जीव के शुभ राग के साथ कर्म निर्जरा भी पाई जाती है, और मिथ्या दृष्टि जीव के शुभ राग के साथ केवल पुण्य बंध पाया जाता है। तो इतना फर्क तो पड़ता है दोनों में, इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव के पुण्य को क्रमशः मोक्ष का कारण बतलाया। एक गाथा भाव संग्रह ग्रंथ में आचार्य देवसेन स्वामी ने लिखी है, सम्मा इच्छी पुण्यम न होई संसार कारणम नियमा मोक्ष होई हेउ जैव नियानंद सो कुणई। सम्यक दृष्टि का पुण्य नियम से संसार का कारण नहीं होता, मैंने चार गतियों में भटकाने वाला नहीं होता, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव को दो गतियां तो होती नहीं है। कौन सी दो गतियां नहीं होती? नरक और तिरेंस गति नहीं होती। तो सम्यक दृष्टि का जो पुण्य है वो संसार में भटकाने का कारण नहीं, चारों गतियों में ले जाने वाला नहीं होता। पर वैसे भी देखा जाए तो चार गतियों में पुण्य नहीं ले जाता, कुछ गतियों में तो पाप ले जाते हैं। तो सम्यक दृष्टि दो गतियों में तो जाते ही नहीं। अब रही बात बाकी पुण्य की, तो वो पुण्य भी मोक्ष होई हेउ मोक्ष का हेतु बन जाता है। मोक्ष का डायरेक्ट हेतु तो नहीं बन सकता कोई भी कर्म, क्योंकि कर्म जो स्वयं बंधन रूप है वो बंधन मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है। पर वो मोक्ष में जो सहायक रत्नत्रय है, उस रत्नत्रय तक पहुंचाने वाला होता है। जैसे आपको कालूपुर जाना है, वहां से ट्रेन पकड़नी है, तो ट्रेन तक आपको जो पहुंचाएगा वो भी तो आपके वहां पहुंचने में सहायक हुआ कि नहीं। उस अपेक्षा से सम्यक दृष्टि के पुण्य को मोक्ष में सहायक बताया है, साक्षात कारण तो है नहीं मोक्ष का। और आम धारणा भी जनता में जितने सामान्य श्रावक लोग रहते हैं, जो देव पूजा गुरु की सेवा और आहार दान आदि करते हैं, उनमें भी ऐसा कोई श्रावक नहीं है जिसकी ऐसी धारणा हो कि पूजा करते करते मुझे मुक्ति मिलेगी या साधु की सेवा या आहार दान देते देते मुझे मोक्ष मिल जाएगा। क्या धारणा है सबकी? दीक्षा के बाद ही तपस्या से मोक्ष प्राप्त होगा, ऐसा कौन नहीं मानता? सब मानते हैं? या फिर किसी का इसमें भी भिन्न मत है? किसी की ऐसी धारणा तो नहीं है कि मंदिर में पूजा करते हुए मुझे भी केवल ज्ञान और मोक्ष प्राप्त हो जाएगा? किसी की नहीं है। तो इससे ये स्पष्ट है कि ये सारी जो पुण्य प्रवृत्तियां हैं, ये प्रवृत्तियां साक्षात मोक्ष का कारण नहीं है, ये अपन पहले से ही जानते हैं। फिर भी आचार्य महाराज याद दिला रहे हैं कि ये मोक्ष का कारण नहीं है, तो तुम कहीं किसी के बहकावे में आकर इनको मोक्ष का कारण मत मान बैठना, क्योंकि मोक्ष का कारण तो मुनि अवस्था को अंगीकार करके तपश्चरण करते हुए जब ध्यान में लीन होते हैं, शुद्धोपयोग की दशा को प्राप्त होते हैं, अभेद रत्नत्रय रूप निर्विकल्प समाधि में डूबते हैं, तब वो स्थिति बनती है जहां घातिया कर्मों का क्षय होता है, केवल ज्ञान आदि प्राप्त होते हैं। तो इस तरह शुभ और अशुभ का इतना ही विभाजन है। अगर आपके अंदर राग है तो फिर आपको ये देखना है कि शुभ है अथवा अशुभ है। विषयानुराग है तो समझ लेना कि इस समय अशुभ का बंध हो रहा है। धर्मानुराग है या किसी के प्रति दया भाव है तो अथवा किसी के प्रति सद्भावना है, सुखी रहे सब जीव जगत के, वो चाहे जैन हो अजैन हो कोई भी हो, मेरा दुश्मन भी सुखी रहे, अगर ऐसी भावना है तो उस समय आप पुण्य का बंध बांध रहे। कोई किसी का स्थायी दुश्मन नहीं है, कोई किसी का स्थायी मित्र नहीं है, अपन ही अपने दुश्मन बन जाते हैं, अपन ही अपने दोस्त बन जाते हैं, वास्तव में सब अकेले हैं। ये तो बीच में कभी किसी से मिलना हो जाता है और कभी राग हो जाता है, कभी द्वेष हो जाता है, पर कौन हमेशा साथ चलने वाला है? मान लो 6 जन्म तक कोई साथ चला, फिर या फिर आप उससे भी अधिक संख्या ले लीजिए, संख्यात भवों तक साथ दे सकता है कोई? असंख्यात भव भी मान लिए जाए, लेकिन अनंत भवों तक कौन साथ देने वाला है? कोई किसी का साथी नहीं। पर ये तो व्यर्थ में अपन उस औदिक भाव के वशीभूत होकर रागी द्वेषी हो जाते हैं, और फिर जिसको इष्ट मानते हैं उनके हित का विचार करते हैं और हित की चिंता तक करते हैं, माने उसके हित के लिए अपन बेचैन हो जाते हैं, इतना राग होता है तीव्र। बेचैनी राग से हो रही है और किसी कारण से नहीं हो रही है। और अगर कोई शत्रुता के बर्ताव को लेकर अपने साथ पेश आता है तो फिर उसके अहित की चिंता होने लग जाती है। मैं चाहे नरक चला जाऊं लेकिन उसको डुबा के रहूंगा, इतनी तीव्र कषाय हो जाती, वैर बांध लेता है और फिर भव भवांतरों तक पीछा नहीं छोड़ता। तो ये सब अज्ञानता है और अज्ञानता के साथ में कषायों का आवेश भी है। देखो मिथ्या तो अंदर नहीं जाने देता और कषाय बाहर फंसा के रखती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। मिथ्यात्व जो अंतस्थ तत्व है उसके विषय में भ्रमित रखता है, और कषाय बस बाहर विषयों में फंसा के रखती है उसको, राग द्वेष में उलझा के रखती है। बस यही अपने वास्तविक शत्रु हैं। अपन किसको शत्रु समझ रहे हैं? आपको पता होगा कि कट्टर से कट्टर दुश्मन भी कभी कभी मित्र बन जाते हैं, और घनिष्ठ संबंधी भी कभी कभी बैरी हो जाते हैं। तो फिर इसमें इन संबंधों में स्थायित्व कहां रहा? जो किसी समय शेर की पर्याय में थे, उन्होंने जिन जानवरों का शिकार किया था वे जानवर भी कालांतर में मनुष्य गति को प्राप्त होकर जिन धर्म का उपदेश श्रवण कर निर्वाण को प्राप्त हो गए, वो शेर भी जिन धर्म की शरण को प्राप्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो गया। आज तो दोनों वहीं पर है सिद्धालय में। संसार में ही लड़ाई झगड़े हैं, मोक्ष मार्ग में कोई झगड़ा नहीं है, मोक्ष में कोई झगड़ा नहीं है। संसार में ही सारे राग द्वेष कषाय भाव है। तो बार बार अपने मन से ये कहना अथवा अपनी आत्मा से कहना, मन से मत कहो, जाने दो मन को, हे आत्मन तू क्या चाहता है, और इस समय जो तेरे भाव हो रहे हैं इन भावों से तेरा हित होगा, यदि नहीं तो इन भावों को क्यों करता है, क्या इन भावों को बदल नहीं सकता, वैचारिक स्वतंत्रता प्रतिक्षण सब मनुष्यों को प्राप्त है। कल दृष्टांत दिया था कि एक ही परिस्थिति में चार प्रकार के विचार किए जा सकते हैं, फिर अपन बुरे विचार ही क्यों चुनते हैं, बुरे विचार करना ही क्यों पसंद करते हैं, आदत पड़ी हुई है। ठीक बात है, आदत तो पड़ी हुई है, लेकिन क्या आदत बदलने का विचार नहीं आता, उस आदत को अपने साथ रखना है जीवन भर, क्या संलेखना की तैयारी 7 दिन बचेंगे तब करोगे, भावों की तैयारी आज नहीं कर सकते, बाकी शारीरिक साधना है तो ठीक है आप जब चाहो तब करते रहना, लेकिन अभी भावना करने में क्या बुराई है। तो मैं ऐसे भावों को क्यों इकट्ठा करूं जिनका वजन मुझे आखिरी में उठाना कठिन हो। देखो जिस भाव का भार अधिक होगा वो अंत में आपके ऊपर हावी होगा। अगर आपने जीवन में अशुभ भाव अधिक किया होगा तो उसका संस्कार अंत में असर डालेगा, और यदि शुभ भाव किया होगा तो उसका प्रभाव आएगा अंत में। तो फिर क्यों किसी के बारे में कुछ भी सोचते रहना, वो जैसा है उसका द्रव्य और उसकी पर्याय है, मैंने क्या दूसरे द्रव्यों का ठेका ले रखा अपने सिर पे कि सबको मेरी इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए। न भूतो न भविष्यति, संसार न तो किसी एक की इच्छा के अनुसार कभी चला न कभी भविष्य में चल सकेगा। संसार की गति अपने ढंग की है, अपने भावों की गति को संभालना ही विवेकी मनुष्य का कर्तव्य है। और यदि कोई ये कहे कि नहीं अभी तो नहीं संभल रहे हैं, तो फिर उसको अपने आप से ये भी पूछना चाहिए तुम संभालने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं, कोशिश नहीं हो रही है, ऐसा बोल सकता है क्यों नहीं हो रही है। प्रयास करने पर असंभव को संभव बनाने की शक्ति हर आत्मा के पास है। कई बार वेदना से लगाव हो जाता है तो मनुष्य उल्टे सीधे विचार करके उन विचारों की वेदना को भोगता हुआ जानबूझकर सद्विचार से मुंह मोड़ लेता है। लेकिन ज्ञानी जनों को उसकी इस चेष्टा पर करुणा उत्पन्न होती है कि बेचारा देखो क्या कर रहा है, ये अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, ये चाहे तो इसी समय अपने विचार बदल करके अपना कॉन्शियसनेस कैलिबर, अपनी चेतना का स्तर उन्नत बना सकता है, पर ये व्यर्थ में एक दिशा में अनिष्ट विचार करके दुखी हो रहा है। दुखी होना वैकल्पिक है, आप चाहे तो हो न चाहे तो न हो, कोई किसी को जबरदस्ती दुखी नहीं कर सकता। अब कोई प्रश्न कर सकता है, इसमें तर्क कर सकता है, अगर कोई मारने पीटने लग जाए तो दुख होगा कि नहीं होगा, कोई उल्टा सीधा बोलने लग जाए तो दुख होगा कि नहीं होगा, ये आपके सोचने के ढंग पर निर्भर करता है। पांडवों को तो जला दिया था, कितना दुख हुआ होगा उनको। पांडव पुराण में तो लिखा है कि उनके शरीर के जलने का धुआं इतना काला काला और घना था कि आसपास कुछ दिखाई नहीं देता था, इतना धुआं चारों तरफ छा गया था। तो दुख हुआ पर वो दुखी नहीं हुए। दुख में भी दुखी न होना साधना है। भगत सिंह पर कितने कोड़े बरसाए गए थे, पर उन्होंने उसको दुख माना क्या? तो जब देशभक्ति में तत्पर मनुष्य भी वेदना को वेदना नहीं गिनता, तो फिर देवशास्त्र गुरु की भक्ति में तत्पर रहने वाला उस वेदना को वेदना कैसे गिन सकता है? देशभक्त भी जब विपत्तियों से नहीं डरता तो भगवान का भक्त कैसे डर सकता है? भक्त का अर्थ ही होता है टूटा हुआ। भक्त भज धातु है, विभाजन के अर्थ में आती है, और उसमें त प्रत्यय करने पर भक्त ये शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है जिसके टुकड़े हो गए हैं, जो दो टुकड़ों में विभाजित हो चुका है उसको भक्त कहते हैं। किसके टुकड़े हुए हैं? जिसका अभिमान टूट चुका है वो भक्त कहलाता है। व्याकरण की दृष्टि से विचार करें तो ये सिंधी समाज के एक साधु ने, एक बड़े भारी साधु हैं, दादा वासवानी कहते हैं उनको, उन्होंने ये व्याकरण के अनुसार भक्त शब्द की व्युत्पत्ति बताई, और फिर बिल्कुल समुचित व्युत्पत्ति है, कहीं भी बाधित नहीं है। तो उस अपेक्षा से विचार करें कि बस भक्त वो है जिसका हृदय कहता है कि आप ही सब कुछ हैं, मैं कुछ नहीं हूं। यानी जहां पर मैं टूट गया हूं और आप ही आप बच गया हूं, उस भाव को भक्ति भाव कहते हैं। तो आचार्य कुमकुम स्वामी कहते हैं कि राग का राग छोड़ दो, और वीतराग का भी जो राग है वो भी बंध का हेतु है, इसको भूलो मत। लक्ष्य केवल मोक्ष का रखो, बीच में जितनी चेष्टाएं कर रहे हो, पुण्य प्रवृत्तियां कर रहे हो, निषेध नहीं है, लेकिन साधना को साधना समझो, साध्य को साध्य। साधना को साध्य मत बना लो। ध्यान से सुनना इस बात, मैंने 5 उपवास कर लिए, सद गए, 5 उपवास मेरे से सद गए। ऐसा कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 5 उपवास साध्य थे। दृष्टांत समझ में आ रहा है? 5 उपवास क्या थे? साध्य थे। तो 5 उपवास होने पर उपवासकर्ता ने ये सोचा कि पांच उपवास सद गए, तो उसको संतुष्टि हो गई। पर क्या उपवास साध्य है जैन मार्ग में या साधन है? तो साधना करते समय साधन को साधन समझना और साध्य को साध्य। साध्य क्या है? तपसा निर्जरा च। उपवास के द्वारा क्या साधता है? निर्जरा और संवर। तो निर्जरा और संवर को भूल गए और पांच उपवास मुझसे सद गए, यानी उपवास को साध्य बना लिया। साधन को जो साध्य बना लेता है वो साध्य से हमेशा दूर रहता है। साधन साधन है, साध्य साध्य है। साधन साध्य नहीं है और साध्य साधन नहीं है। स्पष्ट हो गया? तो पुण्य जो है वो रत्नत्रय प्राप्त करने के योग्य पूरे साधन जुटा देगा, लेकिन रत्नत्रय आत्मा में होता है, उस साधनों में नहीं होता। भगवान की प्रतिमा में भगवान की स्थापना है, लेकिन जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो रहा है भगवान के दर्शन से, उसका सम्यक दर्शन प्रतिमा में नहीं है। उसका सम्यक दर्शन कहाँ है? उसकी आत्मा में है। इसी प्रकार उसका सम्यक ज्ञान उसकी आत्मा में होगा, उसका सम्यक चरित्र उसकी आत्मा में होगा। तो साध्य कौन हुआ? अपना अंतस्तत्व। और साधन जो है उसमें जितने भी सहायक उपाय होते हैं वो सब साधन बन जाते हैं। कर्म सर्वमपि सर्वविदो यद् बन्ध साधनमुशन्त्य विशेषात् तेन सर्वमपि तत्प्रतिशुद्धं ज्ञानमेव विहितं शिव हेतु। रथोद्धरचन। सर्वज्ञ भगवान ने समान रूप से सब प्रकार के कर्म को बंध का ही कारण कहा है। पाप को भी बंध का कारण कहा है, पुण्य को भी बंध का कारण कहा है। तेन इसलिए तत् सर्वम अपि प्रतिषिद्धम, यहां पर इस पुण्य पाप अधिकार में सबका निषेध कर दिया। मोक्ष जाने में न पुण्य की हमें आवश्यकता है न पाप की। पाप तो पहले ही छोड़ देते हैं, फिर पुण्य अपने समय पर छूटता है। पर ये दोनों कर्म मोक्ष में बाधक है, ये बात ध्यान में रखने की है। और मोक्ष में साधक जो है वो मुनि अवस्था में धारण की हुई निर्विकल्प समाधि है, शुद्धोपयोग रूप परिणाम है, वो मोक्ष में साक्षात सहायक है। फिर वो प्रश्न तो पहले से ही उत्तरित है कि अगर पुण्य नहीं होगा तो मुनि कहाँ से बनेंगे, तो उसको तो पहले ही स्वीकार कर लिया कि भाई उतना पुण्य तो जरूरी है। लेकिन वो पुण्य डायरेक्ट मोक्ष नहीं ले जाएगा, वो मुनि बना देगा। पर मुनि बनने के बाद क्या करना है उसकी बात है। मुनि बनने के बाद अब पुण्य को मत पकड़े रखो, अब आगे बढ़ो, कहीं अटकना नहीं है। जो अटकते हैं वो भटकते हैं। किसी भी राग में आप अशुभ राग में अटकेंगे तो भटकेंगे, शुभ में अटकेंगे तो भटकेंगे। अटकने की बात है ही नहीं मोक्ष मार्ग में। मुनि हो गए, अब निर्विकल्प हो। निर्विकल्प होने के लिए ही तो मुनि बने थे, या और कुछ करने के लिए बने थे? क्या करना था मुनि बनकर, बोलो? मुनि किस लिए बना जाता है? रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए। पूर्ण कर्मों का क्षय उसी पद से होता है। कर्म क्षय के लिए मुनि बना जाता है। कर्म क्षय रत्नत्रय से होता है। और रत्नत्रय की अभेद दशा में ही कात्या कर्म नष्ट होते हैं, उसका नाम है निर्विकल्प समाधि। तो मुनि का कार्य अटकना नहीं है, बढ़ते जाना है, और बढ़ने का कार्य सभी का है। अभी जिनके पाप नहीं छूटे हैं उनको पापों को छोड़ने की तरफ बढ़ना है, और जिनके पाप एक देश छूट गए हैं उनको सर्वदेश छोड़ने की तरफ बढ़ना है, और जिनके सारे पाप छूट गए हैं उनको शुद्ध भाव की तरफ बढ़ना है। कहीं रुकने का नाम ही नहीं है, मोक्ष तक कहीं भी कोई विश्राम नहीं है, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ। एक बार एक मुनिराज ने आचार्य श्री को प्रवचन सार के अध्याय में पूछा, समता का प्रकरण चल रहा था, 241वीं गाथा में समता का बड़ा सुंदर वर्णन किया है आचार्य कुमकुंद स्वामी ने। फिर आचार्य श्री से पूछा एक मुनिराज ने कि आचार्य श्री आखिर समता कहाँ तक रखें? आप लोग भी कई बार सोचते हैं मन में कि कब तक सहन करें, कहाँ तक समता रखें? तो आचार्य श्री ने एक मंद मुस्कान के साथ कहा, मोक्ष तक। मोक्ष तक, क्योंकि उसके बिना छुटकारा नहीं है। साधना में प्रारंभिक अवस्था में संघर्ष है, मध्य में समता है, अंत में समाधि है। संघर्ष तब तक है जब तक ट्रेनिंग ठीक से नहीं हो जाती, मन और शरीर को साधना थोड़ा प्रारंभ में आवश्यक होता है। जैसे मान लो गर्मी सहन नहीं हो रही है, हमेशा कूलर में बैठे थे, अब दीक्षा ले ली, अब क्या करो? अब एक भक्त को बैठा लो पास में, नैपकिन लेकर हवा करते रहे दिन भर, या और कोई उपाय करो? नहीं, अब गर्मी को सहन करो, कितना भी कष्ट हो झेलो। तो वो कष्ट झेलने की जो स्थिति है वो संघर्ष है। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे अभ्यास किया, प्रथम वर्ष में जितनी गर्मी लगी थी, जितनी आकुलता हुई थी, फिर दूसरे साल में कम हो जाती आकुलता। वैसे ही सर्दी की स्थिति है, पूरा शरीर अकड़ जाता है, उंगलियां हिलती नहीं पैरों की, ठंड में इतनी भयंकर स्थिति बनती है, शरीर पूरा एकदम शून्य हो जाता है। फिर बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत हिलाते 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 हल्की फुल्की गर्माहट आती है, फिर बैठ जाते हैं और फिर उस शीत की वेदना को सहन करते हैं। वैसे ही ग्रीष्मकाल की स्थिति होती है, एक आसन में बहुत देर तक बैठो, पसीना आता है, गर्मी लगती है, और कई बार ऐसे आँखों के ऊपर से भी पसीना टपकता है, कई बार शरीर पर मक्खियाँ बैठती है, मच्छर बैठते हैं, कई प्रकार के परेशान आते हैं, अनेक कष्ट साधु के जीवन में आते हैं। ऐसा एक भी क्षण नहीं होता 24 घंटे में जिस समय एक में एक कष्ट न रहता हो। 22 प्रकार के परेशानियों में ऐसा कोई क्षण नहीं होता साधु के जीवन में कि जब एक भी परेशान न हो। आसन संबंधी कष्ट होगा, चलते समय पैर में कुछ चुभ रहा उसका कष्ट होगा, गर्मी का कष्ट, सर्दी का कष्ट, अनेक प्रकार के कष्ट लगे रहते हैं। आक्रोश नाम का भी एक परिचय, किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, उससे संबंधित कष्ट भी हो सकता है। तो ये जब तक कष्टों को सहन करने की स्थिति रहती है वो संघर्ष की स्थिति रहती है। और अभ्यास के पश्चात, अभ्यास क्या होता है, किसका अभ्यास करते हैं साधु? किताब लेकर पढ़ते ही रहते हैं दिन रात, उस अभ्यास की बात नहीं है। वेदना के समय कर्म के उदय को देखने का अभ्यास, कर्म के उदय में हम बहेंगे नहीं, कर्म अनादि से हमें बहाता चला आ रहा है, हम हमेशा कर्म के उदय में बह जाते हैं। क्रोध का उदय आता है तो हम क्रोधी हो जाते हैं, राग का उदय आता है रागी हो जाते हैं, द्वेष का उदय आता है द्वेषी हो जाते हैं। अब नहीं होना, अब हम देखेंगे कि कर्म का उदय आता है और वो कितना असर डालता है हम पर, देखें तो सही। रत्नत्रय धारण करने के बाद कर्म की शक्ति कितनी रह गई है देखना तो है। तो जब वो देखना चालू कर देते हैं तो कर्म थर थर कांपने लग जाते हैं, क्योंकि दृष्टा की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि उसके सामने ये राग द्वेष टिक नहीं पाते। विटनेसिंग डिसॉल्व रेजिस्टेंस, बिल हैरिस ने कहा कि अपन देखना चालू कर दो तो संघर्ष शांत हो जाता है। साक्षी भाव संघर्ष का विनाशक है। साक्षी बन जाओ, दर्शक बन जाओ, मन में जितने संघर्ष चलते हैं वो सब शांत हो जाएंगे। एक बार हम जबलपुर से नागपुर की ओर विहार कर रहे थे, अप्रैल का महीना था, 15 अप्रैल को हम नागपुर पहुंचे थे शाम को। उस समय जब सिवनी से विहार किया, रास्ते में कहीं पर आहार हुए और आहार के बाद जब शाम को देखा कि धूप बहुत तेज है, 4 बजे हमने सोचा कि चलो 4 बजे निकलते हैं। 4 बजे निकले तो रोड बहुत तपे हुए थे। फिर हमने सोचा कि इतने तपे हुए रोड हैं, पैर ऐसे लग रहे हैं जैसे कि तवे के ऊपर रोटी रखी हो, वैसे पैर के तलवे सिक रहे हैं। लेकिन इस वेदना में दुखी होना हमारे ऊपर निर्भर करता है। दुख तभी होता है जब कषाय की जाए। कषाय ना करो तो दुख हो ही नहीं सकता। ये अकाट्य सिद्धांत है, अटल नियम है। फिर हमें जे कृष्णमूर्ति की एक बात जो हमने पढ़ी थी वो याद आई कि जब अपन तुलना करते हैं तो दुख होता है, तुलना करते हैं तो दुख कैसे होता है कि अभी तो पैर अच्छे थे और अब यहां रखने पर गर्म लग रहे हैं, खराब लग रहा है, तो वो अच्छे थे इसको निकाल दो दिमाग से। अभी जो है उसको देखो, जो है वैसा ही है बस, उसमें कोई तुलना नहीं है, किससे अच्छा किससे बुरा, बस गर्म है, गर्म को गर्म जान लो। थोड़ी देर संघर्ष की स्थिति रही कि नहीं गर्म लग रहा है, जल रहे हैं पैर, लेकिन उसके बाद मतलब पता नहीं ये चमत्कार होता है हमेशा। जब भी आप साक्षी भाव में आते हैं तो निश्चित रूप से एक ऐसा चमत्कार होता है अपनी आत्मा में कि वेदना शांत हो जाती है। और उसके बाद हम चलते गए ध्यान ही नहीं गया वहां पर, वो एकदम अलग लेवल पर कहीं चले गई चेतना, तो फिर बिल्कुल आनंद पूर्वक चलते चले गए। और ये अब जब हम कर सकते हैं तो फिर और भी लोग कर सकते हैं, ऐसा हम समझते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को बहुत सामान्य छोटा सा इंसान समझ के रखा बचपन से, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि जो काम हम जैसे छोटे लोग कर सकते हैं तो फिर और लोग क्यों नहीं कर सकते। जिनको बहुत सारी बातें सुनने मिली है बचपन से, जिनको बहुत अच्छे अच्छे संस्कार मिले हैं, वो लोग क्यों नहीं कर सकते, अवश्य कर सकते। सबके अंदर वो शक्ति पड़ी हुई है, सोई होगी, जगा दो। बाहर किसी जगह जाकर के हाथ मत जोड़ो, अंदर अपनी शक्ति से कहो कि हे शक्ति माँ, उठो, रक्षा करो। और विश्वास रखिएगा कि अवश्य आपकी रक्षा होगी। अंतर्मुख होकर एक बार अपनी चेतना से कहो कि हे चेतना मेरी रक्षा कर, इस समय कषाय मुझे दुखी कर रहा है, तो वो चेतना निश्चित आकर के रक्षा करेगी। चेतना आपसे कहेगी निराकुल स्वरूप है तेरा, छोड़ दे आकुलता, तूने पकड़ा है, देख तेरी मुट्ठी, देखो ढीली कर ना, ढीली कर मुट्ठी में तूने पकड़ा है। सर बोल रहा है कि मुझे तकलीफ हो रही है, पकड़ने की तकलीफ हो रही है, पकड़ा किसने, तूने, अब छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। अब वो जैसे माँ के समान चेतना धीरे धीरे, अगर कोई बच्चा जोर से बोलने पर न माने, कई बार माताएं भूल करती है, वो और जोर से बोलती है, तो उसकी आदत और बिगड़ती है। फिर अब नेक्स्ट टाइम जब नहीं मानेगा तो उससे और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो उसका तरीका ये है कि अपनी आवाज आधी कर दीजिए, जितनी आवाज में आपने पहले कहा था उसको आधी कर दीजिए। उसके बाद अगर दूसरी बार भी ना माने तो और धीमे से बोलिए, देखो आप 2-4 बार प्रयोग करके देखो क्या परिणाम निकलता है। ये अपने साथ है, कुछ भी बाहर नहीं हो रहा है, सब कुछ अपने अंदर हो रहा है। 1% भी कुछ बाहर नहीं हो रहा, सारा कुछ अपने भीतर, आत्मा के असंख्यात प्रदेशों के बाहर। आप बताइए आपको क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है आपको? अपनी ही आत्मा में सब कुछ हो रहा है, अपने ही अंदर अपना ज्ञान गुण है, उस ज्ञान गुण से अपन कुछ बाहर की चीजें अंदर पहुंचा देते हैं और फिर उसमें कुछ इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं कर लेते हैं और राग द्वेष करके दुखी होते हैं। तो दुख बाहर से हुआ या अंदर से हुआ? दुख शरीर को होता है कि आत्मा को? शरीर को। शरीर के माध्यम से हो सकता है लेकिन दुख होता आत्मा को है, क्योंकि अगर शरीर दुखी होगा तो चिता में जलते समय तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। बताइए चिता में जलते समय शरीर शांत क्यों रहता है? क्योंकि दुखी होने वाला चला गया है, सुखी और दुखी होने वाला जीव है, शरीर नहीं है। दुख शरीर को कभी नहीं होता, शरीर के माध्यम से जीव को दुख होता है। तो आचार्य कुंदकुन स्वामी कहते हैं कि लक्ष्य केवल मोक्ष का रखो और जिस भूमिका में हो उस भूमिका की प्रवृत्ति जो तुम्हारी चल रही है उस प्रवृत्ति को उस भूमिका का कर्तव्य समझकर करते जाओ, लेकिन उसको साध्य मत बना लो। वो प्रवृत्ति तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। प्रवृत्ति से रहित होकर निर्विकल्प समाधि में जाना तुम्हारा कर्तव्य है, पर निर्विकल्प समाधि भी तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। सिद्धोपयोग भी साधन है, साध्य नहीं है। कितनी गहरी बात है। शुद्ध भाव भी उपाय है, उपेय नहीं है। उपेय माने उपाय से जिसको पाया जाता है उसको उपेय कहते हैं, उपेय नहीं है। शुद्ध भाव उपाय है, उपेय तो मोक्ष है। तो अटकना नहीं है कहीं भी, अटकने वाले भटकते हैं। और जब तक आप मैं की अकड़ नहीं छोड़ेंगे आत्मा पकड़ में नहीं आएगी। अब फिर एक प्रश्न उठ सकता है मन में, हम श्लोक पढ़ देते हैं और वो प्रश्न यहाँ रख करके आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं, उत्तर अगली बार देख लेंगे। क्योंकि प्रश्न सुंदर है तो फिर आपकी बुद्धि थोड़ी बहुत चलेगी। निषिद्धे सर्वस्मिन् सुकृत दुरिते कर्मणि किल प्रवृत्ते नैष्कर्मी न खलु मुनयः सन्त्यशरणाः तदा ज्ञाने ज्ञानं प्रतिचरितमेषां हि शरणं स्वयं विन्दन्त्येते परममृतं तत्र निरताः। जो पाप भी छोड़ दिया और पुण्य भी छोड़ दिया तब तो कुछ बचेगा ही नहीं, एकदम आत्मा असहाय हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये प्रश्न उठता है। जब साधु पाप तो छोड़ ही चुके हैं तभी तो साधु कहलाए, और साधु होने के बाद जब उस अवस्था में चले गए जहां पुण्य भी छूट गया तो फिर बचा क्या, फिर कुछ सहारा रहा कि नहीं? सब खोखला हो गया, पूरा शून्य हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे जब कुछ भी नहीं बचेगा, ये प्रश्न है। इसका समाधान फिर देखा जाएगा। जवाणी के ज्ञान दे तुझे दो कालो शरणागत सो पावे अभी वैज्ञानिकों ने एक शोध करके जानकारी प्रस्तुत की है कि यदि कोई इस प्रकार की तत्व चर्चा को या आध्यात्मिक बात को तल्लीन होकर के सुनता है तो उसका एनर्जी लेवल, उसका कॉन्शियसनेस कैलिबर 850 तक चला जाता है। गांधी जी का 700 था और अभी धरती पर किसी का नहीं है इतना हाई एनर्जी लेवल। तो जब जिनवाणी का अपन श्रवण करते हैं और तल्लीन मन से करते हैं, क्या होता है कि अपन जैसे ऑफिस में ऑफिसर रहता है, घर आता है तो फिर वो घर का सदस्य माना जाता है। तो घर का सदस्य अगर ऑफिसर का रोल वो घर में करेगा और वहां ऑफिस में जाकर घर का रोल करेगा तो फिर उसका जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा, उसको बहुत असीम दुख होगा। वहां से उसकी नौकरी जाएगी और घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए जिनवाणी सुनते समय आप सब कुछ भूल जाओ। सवेरे मान लो आपको किसी ने थप्पड़ मारा हो या घर से धक्का मार कर निकाल दिया हो, ये भी भूल जाओ। तो ओम शांति।